गुलाल
पतंग नाम के वृक्ष में से बनता था गुलाल,
शरीर को कोई हानि नहीं
करता था। वह गुलाल
छाटने में उत्साह पैदा होता था,
थोड़ा शरीर को कोई हानि नहीं करता था, छाटने में उत्साह पैदा होता था, थोड़ा बहुत लाभ भी हो सकता था।
अभी जो रंग बनते हैं,
अभी जो गुलाल बनता है वो केमिकलों का बनता है।
आंखों को, शरीर को,
अभी जो रंग बनते हैं उनमें चमड़ी को, आंखों को, शरीर को भारी नुकसान पहुंचाने वाले कलर होते हैं, जिनसे चमड़ा रंगा जाता है, जूते रंगे जाते हैं,
आजकल के जमाने
कपड़े रंगे जाते हैं। उन रंगों से खेलना आजकल के जमाने में हितावह नहीं है। धार्मिक लोग कुदरत के केसुड़े, कुदरती गुलाल से खेलते थे, लेकिन आध्यात्मिक लोग तो आत्मा के रंग से, आत्मा के गुलाल से, जिसमें कोई आर्टिफिशियलता घुस नहीं सकती, जिसमें कोई पॉइजन घुस नहीं सकता, ऐसे आध्यात्मिक रंग से अपने दिल को रंगते हैं। साधक कहता है कि शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, नीली न रंगाऊंगी, पीली न रंगाऊंगी, तोरे रंग से रंग दे चुनरिया, शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। हे शाम, जैसे तू आत्मानंद के रंग में रंगा है, तेरी हर अदा ईश्वरी आनंद और ईश्वरी मौज प्रकट करती है, क्योंकि तेरी चुनरिया रंगी हुई है। तूने अपनी चुनरिया रंगी है, इतना ही नहीं तू औरों की भी रंग सकता है। शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, नीली न रंगाऊंगी, पीली न रंगाऊंगी, तोरे रंग से रंग दे चुनरिया। कबीर कहते हैं, साहेब है मेरो रंगरेज, चुनरी मेरी रंग डारी। ये होली दुलेटी का रंग जो शरीर को लगाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं इन कलरों में कितना जहर पड़ा है। जिन कलरों से जूते रंगे जाते, उन कलरों से तुम अपना मुंह क्यों रंगवाते हो? कपड़े को पानी में डालो, सर्फ में डालो, फिर भी कलर नहीं छूटता, ऐसे उसमें जहरी केमिकल पदार्थ डाले जाते, और वे ही आजकल सस्ते पड़ते हैं और होली के खेल में खेले जाते। इसलिए अपने चमड़ी को बाहर के रंग मत लगवाना। तुमने तो नहीं लगवाया, किसी ने एक आधे ने लगवाए होंगे। बाहर के रंग, केसुड़े के रंग पहले लगाए जाते थे, जो चमड़ी के लिए अच्छा होता था। फूलों को उबाल के उसका कलर निकाल के एक दूसरे को छांटते थे। साहेब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। ये बाहर का रंग तो पानी से नहीं तो फिर साबुन से नहीं तो केरोसिन, कपड़े धोने का साबुन चमड़ी को लगाना हितावह नहीं। और आजकल के रंग गुलाल, सिंदूर में शीशा पड़ता है, तो इन कलरों से अपने तन को मत रंगिए। आदमी का मन रंगों के तरफ आकर्षित हो जाता है, कपड़े भी पहरेगा रंगा हुआ। जो शांत प्रकृति का आदमी होगा उसको स्वच्छ चीजें सुंदर लगेगी, जो राजसी प्रकृति का होगा उसे और रंग अच्छे लगेंगे, और जो कामी विकारों का होगा वो लाल कपड़े पहनने को पसंद करेगा, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन हम लाल कपड़े, सफेद कपड़े, हरे कपड़े, पीले कपड़े पहरे न पहरे अलग बात है, लेकिन हमारे दिल में तो राम नाम के कपड़े लगे हों। साहेब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग, स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। साहेब है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। हे मेरे मालिक, तू मेरी दिल की चुनरिया रंग देना, ऐसी रंग देना कि संसार का स्याही रंग, राग द्वेष का रंग, मोह ममता का रंग, अहंता ममता का रंग, मरण और जन्म का रंग, जीवन और मृत्यु का रंग छुड़ाकर तू अमर आत्मा के रंग से ए मेरे मालिक तू मुझे रंग देना। मैं संसार के खिंचाव तनाव में उलझ जाऊं तो हे मेरे प्रभु तुम मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम ली। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, धूलिटी के दिन धूल उछाली, खर्व पर बैठे जूते उछाले, शोर बकोर किया घड़ी देर के लिए। हम सहजिक जीवन में जीते हैं, जी सकते हैं, थोड़ा लाभ भी होता है, अगर नहीं समझ पाए तो हानि भी हो सकती है। लेकिन भगवत कथा समझ लो तो साक्षात्कार होता है, न समझो तो रोड धुल जाता है। जमीन है तो फल रूप होती है, फल लगे हैं तो रस रूप हो जाते हैं, रस रूप होते तो रस स्वरूप आत्मा का दीदार होने लगता है। ये सत्संग का कभी व्यर्थ अर्थ नहीं है। बाहर के रंगों से तो हानि भी हो सकती है और लाभ है थोड़ी देर के लिए हर्ष उल्लास, और इसका लाभ है बहुत देर तक शांति, और साथ में भी ये ज्ञान की निगाहें चलती है तो संसार रूपी सर्प का दंश हमको नहीं होता। साहेब है रंगरेज चुनरी मोरी, रंग डारी धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। संसार का रंग कपड़े को लगे, फिर दिन दिन धो तो सुरंग नहीं होगा, दिन दिन बद्दा पड़ता जाएगा, दिन दिन हल्का होता चला जाएगा, मिटता चला जाएगा। लेकिन भक्ति का रंग, ज्यो ज्यो भक्ति का रंग तुम उतारने की भी कोशिश करो तो भी चढ़ता जाता है, और चढ़ाने की कोशिश करो तो भी चढ़ता जाता है। होली कैसी खेली जाए? होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनि की मत संत आज्ञा पे लिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए, सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। होली हुई तब जानिए पिचकारी सतगुरु की लगे, सब रंग कच्चे जाए उड़, एक रंग पक्के में रंगे। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का, अद्वैत में रंग जाए मन, है शेर जो चालीस सो ही जानिएगा एक मन। चालीस शेर कहो चाहे एक मन कहो, अनेक कहो चाहे एक कहो, जो चालीस शेर है वही मन है, और मन में ही चालीस शेर छुपे हुए हैं। अभी तो जो 20 किलो है उसको मन बोलते हैं, कुंटल में 100 किलो छुपे हैं, बिना 100 किलो के कुंटल नहीं, लेकिन कुंटल के अंतर्गत 100 किलो है। ऐसे ही जो अनेक अनेक चित्त की वृत्तियां हैं वो एक परमात्मा के अंतर्गत है। ऐसा जो अद्वैत का रंग लग जाए, आत्मा का रंग लग जाए तो पक्का रंग है। फिर द्वैत में व्यवहार करते हुए भी चित्त में द्वैत के संस्कार नींव नहीं डाल सकते। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान ऋषि मुनि की मत संत आज्ञा पे लिए। संतों की आज्ञा यह है कि मनुष्य जन्म मिला है उसका सदुपयोग करके अपने आत्मा को जान लो। इस होली को कोचिन में अपने ढंग से लोग मनाते हैं। कोचिन के लोग क्या करते हैं कि पानी का मटका भर के, उस मैला मैला पानी भर के उसको सील कर देते हैं। फिर बौद्ध मटका महंत और वहाँ का राज्य सत्ता का कोई बड़ा अधिकारी, वो दोनों मिलके होली के दिन जो किया हुआ सील है वो बाद में खोलते हैं वैशाखी पे। पानी अगर पूर्ण साफ है तो आने वाला वर्ष एकदम सुंदर होगा, यदि थोड़ा मलिन है तो आने वाला वर्ष जरा मीडियम होगा, अगर वैसे का वैसा गंदे का गंदा है तो आने वाला वर्ष खतरे वाला होगा, ऐसा भी लोग मानते हैं। ये पर्व जो है, हर पर्व ने अपनी अपनी योग्यता है, और हर पर्व पे खाना प्रसाद लेना देना ऋतु के अनुकूल है, जो हमारे शरीर और मन को आध्यात्मिकता के तरफ सुयोग्य बना सकता है। अभी अभी हमने सुना योग वशिष्ठ में कि अहंकार पिशाच, जो अहंकार के हाथ लग गया है उसको वो भिटकाता रहता है। दुख भी अहंकार को ही होता है, वासना भी अहंकार में होती है, चिंता भी अहंकार में होती है, जन्म मृत्यु भी अहंकार के कारण होता है। देह तो रची है पांच भूतों की, श्वास से वो चल रही है, मन संकल्प विकल्प करके जगत को देख रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही है, लेकिन इसका सब का आरोप अहंकार अपने में कर लेता है, मैं। और जितना मैंपना इसका भारी हो जाता है, उतना वो स्वाभाविक जीवन से, आनंदित जीवन से, ईश्वरी जीवन से, परम शांति के जीवन से दूर हो जाता है। तो उस परम शांत स्वरूप परमात्मा तत्व के जीवन से दूर होने वाला व्यक्ति को होली धुलेटी जैसे दिन कुछ नजदीक लाते हैं। जो पद हैं, प्रतिष्ठाएं हैं, जो नाम है, जो रीति रिवाजों में उलझे हैं, उन सब को भूलकर इन दिनों में एक दूसरे पर रंग उछालते हैं। उसमें बड़पन छोटापन गल जाता है, एकता के संगीत कुछ टपकता है। पहले के जमाने में केसुड़े के फूल उबालकर उसका रंग बनाते थे, और उस रंग में ऐसे रासायनिक हैं कि शरीर के चमड़ी के कोई रोग होने वाले हैं तो नहीं होंगे, हुए हैं तो थोड़े शांत हो जाएंगे। वो स्किन के लिए उपयोगी होता है केसुड़े। अब इतना केसुड़े के फूल तो इन शहरों में है नहीं, लोग इतनी मेहनत भी नहीं करते, तो आर्टिफिशियल कलर का आविष्कार हुआ, जो चमड़ा रंगने के काम आते हैं, बूट पॉलिश के काम आते हैं, जूता रंगने के काम आते हैं, उसी को लोग होली दिवाली में एक दूसरे का मुंह रंगते हैं। श्री राम। इन सब उत्सवों के पीछे है जीव अपनी अंदर छुपी हुई सहजता को, अंदर छुपी हुई सरलता को, अंदर छुपी हुई अहंकार सत्ता को पाले। इस हर्ष और शोक की थप्पड़े खाने वाले अहंकार को दुलेटी का दिन याद दिलाता है कि इस अहंकार के इर्द गिर्द की सजावट के सुख के ऊपर आज का दिन धूल डालो, और निर्दोष नन्हे बुनने की नाई एकत्व की भावना करो। 40 शेर वो मन है और मन में 40 शेर छुपे हुए हैं, ऐसे ही अनेक में एक छुपा है और एक में अनेक बस रहे हैं, इसकी याद दुलेटी दिलाती है। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनि की मत संत आज्ञा पे लिए, सच को ग्रहण कर लीजिए जो झूठ हो तज दीजिए, सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। अहंकार के सजावट, अहंकार जो है झूठा है, आत्मा जो है सच्चा है। तो जो काम, जो प्रवृत्ति, जो भजन, जो सुमरण, जो सेवा, जो धन, जो कुछ क्रियाकलाप सुबह से रात तक हम करते हैं, उसमें हमारी सजगता होनी चाहिए। जो कुछ हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में हमारा अहंकार सुसज्जित हो रहा है कि विसर्जित हो रहा है? हम अहंकार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं कि अहंकार को परमात्मा में मिटाने के लिए कर रहे हैं? बच्चे की शादी करना, बैंड बाजे बजाना कोई मना नहीं है, बच्ची की शादी में बैंड बाजे बजवाना कोई मना नहीं है, लेकिन उस बैंड बाजों के साथ साथ नादानुसंधान करते करते सुषुप्त आनंद को विकसित करते हो कि सुषुप्त अहंकार को विकसित करते हो, ये जरा जानकारी रखनी होगी। जय जय। दुलेटी आई, होली आई, गेवर खाए और प्रसाद दिए लिए सबके, उस लेन देन में सामने वाले के हृदय में छुपा हुआ परमात्मा है, ऐसे भाव से देते हो कि मैं कुछ देने वाला हूं और इसको नीचे दिखाओ आई एम समथिंग दाता, ऐसा करने के लिए तो नहीं करते? श्री राम। तो जो कुछ तुम्हारी प्रवृत्ति हो सुबह से शाम तक, उस प्रवृत्ति में तुम्हारा अहंकार विसर्जित होता है कि अहंकार सर्जित होता है? आत्म प्रेम बढ़ता है कि अहंकार का प्रेम बढ़ता है? देह की प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगती है तुम्हारी बुद्धि के आत्मा को जानने में, देह के अहंकार को मिटाने में लगती है। इस प्रकार की जिसको दृष्टि मिल जाती है वे आस्तिकता के सोपान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर बाहर के साधन एकत्रित करके ही सुखी होने का दुर्भाग्य नहीं होता ऐसे व्यक्ति के, वो स्वयं सुख रूप होता है। इतर बच्चों को आप गहने पहराएंगे, कपड़े पहराएंगे तो बच्चा शोभा देगा, लेकिन कृष्ण जो चीज को हाथ में छू लेते हैं, बंसी को हाथ में पकड़ लेते तो बंसी शोभनीय हो जाती, मोर पीछ को लगा देते तो मोर पीछ की वैल्यू बढ़ जाती, गहने को स्वीकार कर लेते तो गहने की वैल्यू बढ़ जाती, और जिस गाय पर जरा हाथ घुमा देते उस गाय की कीमत बढ़ जाती। तो श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति, देह का अहंकार जिन्हों फुराई नहीं, ऐसे जिस वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, स्वीकार करते हैं, जिनके बीच रहते हैं, वे सब आदरणीय हो जाती। और रावण जिस वस्तु को छूता है वो सब धिक्कार के पात्र हो जाती। राम जिस वस्तु को छूता है, देखता है, निहारता है, वे वस्तु पूजने योग्य हो जाती है। और रावण जिन वस्तुओं को उपयोग में लाता है उन वस्तुओं से मुंह मोड़ने हो जाता है। तो राम और रावण क्या है, वो अहंकार का एक आखिरी छोर है और यहां विसर्जन का आखिरी छोर। अधूरेटी है तो ऋषियों ने स्थापित की, लेकिन साधन साधारण से साधारण आदमी भी होली नो पैसो आवे छे पिचकारी दुलेटी, तो इस प्रकार भी अनजाने में भी वो कुछ घड़ियां निरअहंकारिता की भोग लेता है, कुछ घड़ियां वे आनंद भीतर के आनंद की ले लेता है। एक तरफ तो पटेवाला का छोकरा और दूसरे तरफ साहब का छोकरा है। इस वक्त साहब का साहब नहीं और पटावाला का पटावाला नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबरी है। विषमता मिटाने का दिन जो है धुलेटी है, अहंकार पर धूल डालने का दिन जो है धुलेटी है, वासनाओं को धूल में कुचलने का दिन धुलेटी है। तो यहां भोले बाबा कहते हैं, सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए, होली हुई तब जानिए पिचकारी सतगुरु की लगे। अगर उस आत्मा को पाने की तड़प नहीं है तो बाजार में जूता उछाल कर होली किया तो क्या बड़ी बात की, किसी को गधे पे चढ़ा दिया तो क्या बड़ी बात की, लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाकर होली जलाई तो क्या बड़ी बात की, ना समझी रूपी अविद्या को अगर नहीं जलाया तो लक्कड़ जलाकर क्या जलाया, अहंकार को अगर धूली में न मिलाया तो धूल एक दूसरे पर उछाला तो क्या उछाला, ज्ञान की पिचकारी अपने हृदय में नहीं लगाई तो केमिकल से बने हुए कलरों की पिचकारी वस्त्र को लगाई तो क्या लगाई। तो यहां बोला बाबा कहते हैं, होली हुई तब जानिए पिचकारी सतगुरु की लगे, सब रंग कच्चे जाए उड़ यक रंग पक्के में रंगे, नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का अद्वैत में रंग जाए मन, है शेर जो चालीस सोही जानिए एक मन।
से प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही पुरुषार्थ से आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूर्व कर्मानुसार बड़ा पापी होता है तो यही दृढ़ पुरुषार्थ करने से उसको जीत लेता है। जैसे बड़े मेघ को पवन नाश करता है और जैसे वर्ष दिन के पके खेत को बर्फ नाश कर देती है, वैसे ही पुरुष का पूर्व संस्कार प्रयत्न से नष्ट हो जाता है। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है।
ये भी आप जो सुन रहे हैं, योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण, भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे हैं और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे शब्द ग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए, तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी, हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति होगी। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी, कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। अनेक जन्म की मति बिगड़ी है, गति बिगड़ी है, धारणा बिगड़ी है, वृत्ति बिगड़ी है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। अब भी और आज सुधर सकती। तुलसी हुई राम को राम बजी, भगवान का होकर भगवान का भजन। किसी हार्ड मास के पुतली का चिंतन, हार्ड मास के पुतले का चिंतन, वो मुझे सुख देगा। अब उसने सामने ताका नहीं तो कि मैं अपने झूठे बर्तन में न मंजवाऊं उस लवर से तो मेरा नाम नहीं, मैं उसके ये पैंट शर्ट न उतरवा दूं और उसको साधारण पैजामे में न ला दूं तो मेरा नाम नहीं। तो क्या बड़ी बहादुरी किया, पैंट शर्ट उतरवा के पैजामे वाला बना दिया, पैजामा उतरवा के धोती वाला बना दिया, वो तेरे को सलवार उतार के साड़ी वाली बनवा दी, तो इससे क्या बड़ी बहादुरी हुई। तो ये सब पागलपन है, ये पुरुषार्थ नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ है पुरुष वो परमात्मा आत्मा, उसके अर्थ प्रयत्न करे, आत्मा परमात्मा के विषय सुने, आत्मा परमात्मा का चिंतन करे, आत्मा परमात्मा को प्रीति करे, आत्मा परमात्मा का श्रवण करे, मनन करे, नित्याध्यासन करे और अपने को देह में आबद्ध करने की बेवकूफी छोड़े, अविद्या छूट जाए। तो आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि। देह अध्यास गलित हो गया जिनका, और जिन्होंने अपने अंतर आत्मा परमात्मा को जान लिया, उनका मन जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ वहाँ ऐसे पुरुषों के लिए समाधि है। तो फिर खुली आँख समाधि, साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चले। आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आँख में हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहार। साधु भाई सहज समाधि वाले, उनके चित्त को सहज में अपने सच्चिदानंद परमात्मा का आनंद शांति माधुर्य समाधान मिलता है। श्री कृष्ण, श्री राम, राजा जनक, सुखदेव मुनि और भी कई ज्ञानवान महापुरुष इस सहज समाधि की ऊंचाई को पाए थे। हर मनुष्य पा सकता है। तो जितना जितना ये सच्चा पुरुषार्थ होगा उतना उतना आदमी सच्चा सुखी होगा, और जितना जितना काल्पनिक पुरुषार्थ होगा उतना उतना काल्पनिक सुख होगा। जैसे क्या रे कि मारी हाटली इंडस्ट्री हो जाए, मेरे इतने मकान है। अब बुद्धू मकान तो धरती पे है, इंडस्ट्रियां धरती पे है, पैसा बैंक में है, तेरी कल्पना का ही तेरे को सुख है, संभालने की गधा मजूरी है। 65,000 करोड़ छे मारा, 65,000 लाख करोड़ हो तो शू थी गयो, 65,000 रुपया हो तो शू थी गयो। अखो कहे अंधारो कूवो झगड़ो मटाड़े कोई नाम हो, आ मारून तारून चेवटे छूटी मरवान, आ बधो झगड़ो मौजूद रहे। विनाश काले विपरीत, हूँ आखा प्रदेश नो प्रमुख छू, पण तारा मन नो प्रमुख थयो होत तो तारी बुद्धि ना तुम्हारी बुद्धि का प्रमुख बन जा। किसी संस्था के प्रमुख बन गए, किसी पार्टी के प्रमुख बन गए, लेकिन मन के तो प्रमुख नहीं बने ना। मैं ये प्रांत का प्रमुख हूँ, मैं राज्य का प्रमुख हूँ, तू सारे ब्रह्मांड का प्रमुख हो जा। लेकिन ये काल्पनिक अहंकार संबंधी सुख है, लेकिन तू जो है उसको जानेगा तो सच्चा सुख। जानसो तो तरसो, अने बनसो तो बगड़सो। पछी उद्योगपति बनो तो पण एक वार मरदू थईने बगड़्या, मिनिस्टर बनो तो एवुं, अने आ डॉक्टर बन्या छे ए बी एवुं ज। पप्पानुं क्यां छे शरीर, शुं दशा छे? दादानुं क्यां छे शरीर, कई दशामां हशे? आपणुं पण एवुं थवानुं एक दिवस चोक्कस। आ तो भलू थजो पान मसाला नु, क्या डॉक्टर ने पान मसाला थी मोडू बंद थवानी नौबत आई, तकलीफ थई, अने श्रद्धा कोई पुण्य आई एटले बापू ने त्या आवता थया। पान मसाला थी जो तकलीफ थी पान मसाले से वो भी ठीक हुई, और 84 लाख जन्मों की जो तकलीफ होने वाली थी उसका भी रास्ता मिली। आए थे कंकड़ का टुकड़ा लेने को, लेकिन हीरा मिल रहा है, तो हीरा क्या है? पुरुषार्थ। आत्म जब मिला आत्म हीरा, तो जग हो गया सवा कसीरा। तो आत्म पुरुषार्थ, पुरुषस्य अर्थ, पुरुष एक आत्मा परमात्मा है, उसके अर्थ कर्म करे, सेवा करे तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा प्राप्त गुरुदेव की कृपा पचाने के लिए, ध्यान करे तो परमात्मा की प्रीति के लिए, सुमरण और नाम ले तो भगवान का नाम ले। तो अंतःकरण शुद्धि के कई उपाय बताए शास्त्रकारों ने। व्रत रखना, दान करना, जप करना, पाप किया तो उसका प्रायश्चित करना, अमुक करना अमुक करना, कई उपाय। फिर भी कब अंतःकरण अशुद्ध हो जाए कहना मुश्किल है। इन सभी उपायों के बाद शास्त्रकारों ने एक सुंदर बात बताई कि बोले भाई अंतःकरण कौन से कर्म से शुद्ध होता है और कब अशुद्ध होता है, इसका जो सीधा गणित चाहते हो और सीधी खबरदारी चाहते हो तो अंतःकरण का मतलब है चिंतन करने वाली एक शक्ति, एक चिंतन करने का साधन। जब वो जगत का चिंतन करता है तो आकर्षण से, राग से, द्वेष से, सत्य बुद्धि से, तो उस समय तुरंत वो अशुद्ध हो जाता है, चिंता राग द्वेष मलिन। और जब भगवत चिंतन करता तो शुद्ध हो जाता। तो भगवत चिंतन अंतःकरण की शुद्धि का सीधा उपाय है, और भगवान को छोड़कर बाकी का जो चिंतन है अंतःकरण को अशुद्ध करता है। तो सारा दिन भगवान 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 तो नहीं करेंगे, शास्त्र बोलते हैं ऐसा ना करो, फिर भी उसका फायदा मिले। जैसे आपके भोजन की थाली में भोजन आ गया तो भगवान 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 एक करते हैं थोड़ी देर, तो भगवान की धरती भगवान करना ठीक हो। ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, प्राण को अपान को व्यान को उदान को समान को हम आहुति देते हैं वैश्वानर को।
पेट तो शरीर का भरेगा लेकिन आपका भाव शुद्ध होगा, अन्न का शुद्ध रस का हिस्सा बनेगा। दूसरा उपाय है कि आप भोजन करते हैं तो गेहूं की रोटी, तो गेहूं कहाँ से आया? पृथ्वी से। पृथ्वी का आधार क्या है? जल। जल का आधार तेज, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश में ही वायु बन होता है। अभी भी आप पंखा हिलाते तो अवकाश है तभी हवा आती, तो आकाश का आधार है प्रकृति महातत्व, अब प्रकृति का आधार है परमात्मा। जैसे लहरों का आधार है पानी, तो परमात्मा का आधार की परंपरा से ये गेहूं की रोटी आपके थाली में पहुंची है, क्योंकि सूर्य भी परमात्मा का, धरती भी परमात्मा की, पानी भी परमात्मा, तो गेहूं परमात्मा का सत्ता से बना, तो रोटी बनाने वाले में भी परमात्मा की सत्ता, चबाने की भी परमात्मा की सत्ता, और रोटी का निमित्त उपादान परमात्मा है। तो चलो ये परमात्मा की अन्नमय ब्रह्म, ब्रह्मो अन्न ब्रह्म, और खा रहे हैं तो खाने वाले के अंदर भी ब्रह्म। ओम ब्रह्मार्पणम्, ब्रह्म को अर्पण करते, ब्रह्म रवि, ब्रह्म को यज्ञ, ब्रह्म अग्ने, अग्नि भी ब्रह्म की, ब्रह्मणे हुतम, ब्रह्मे न तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो आपने भोजन तो किया, साधारण आदमी अन्न खाता है, रोटी खाता है, आप तो भगवान का प्रसाद खा रहे हैं और भगवान को ही खिला रहे, तो हो गया भगवत चिंतन। अभी तो विधि जान लिया, बाद में तो आप जान लिया तो उठाया और थोड़ा तो आपका मन उधर रम जाएगा, तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। ऐसे किसी से भी बात करते हैं तो उसकी गहराई में तो सच्चिदानंद है। शत्रु मित्र के भाव से न बात करो, जिसे बात होती है वही बात सुन रहा है। हो गया भगवत चिंतन, हो गया अंतःकरण शुद्ध। तो इस प्रकार की अगर सावधानी करने के लिए सुबह जप ध्यान करके ये संकल्प ठान ले कि आज तो भगवत चिंतन ही करूँगा, फिर हेरा फेरी नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, और आपके शत्रुओं का पावर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शत्रुओं को तो आपके लिए द्वेष है, और आप ब्रह्म भाव से देखते हैं तो शत्रुओं का जो द्वेष है उससे वो तपेंगे जलेंगे, और आपका ब्रह्म भाव से आप पुष्ट होंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ज्ञानी कहेगा कि शत्रु का ब्रेन हेमरेज हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, चूपू फू फलाना मर जाए, ऐसा ज्ञानी नहीं करता। ज्ञानी अपने ब्रह्म भाव में रहता तो उसका बल बढ़ जाता, और वो द्वेष में रहता तो ब्राह्मण उसका त्याग कर देते हैं, जो ब्रह्म से ब्राह्मणत्व वालक जानता है। क्षत्रियों से वो परास्त हो जाएगा, क्षत्रिय उनका त्याग कर देंगे जो परमात्मा से क्षत्रियों को अलग देखता है, लोग उसका त्याग कर देंगे जो परमात्मा से लोगों को अलग देखता है। जो परमात्मा से अलग देखता है तो उसका व्यवहार ऐसे ही होगा, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो बोले अच्छे तो क्या आमली वाला जे गंदा तू। तो जो ईश्वर से अलग देखता है वो शायद बैंकुट में भी चला जाए तो वहां से गिरेगा।